नमस्ते। आज हम पूज्य गुरुदेव के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं, उनकी शिक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय समझने की कोशिश करेंगे।
जी, उनकी व्याख्या ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है का 7वां अध्याय।
हाँ, ईश्वर की प्राप्ति। और देखिए, जैसे ही हम ये वाक्य सुनते हैं, ईश्वर की प्राप्ति,
तो मन में एक अलग ही तस्वीर बनती है ना?
बिल्कुल, किसी चमत्कार की, किसी रहस्यमयी अलौकिक घटना की, जैसे किसी को कोई दिव्य दर्शन हो गया हो। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब हर कण में मौजूद है,
तो फिर उसे प्राप्त करने का क्या मतलब?
वही तो, जो चीज पहले से ही हर जगह है, उसे पाया कैसे जा सकता है? तो आज हम गुरुदेव की शिक्षाओं में इसी, कह सकते हैं, विरोधाभास का हल खोजेंगे।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और असल में यही इस पूरे अध्याय का सार भी है। पूज्य गुरुदेव इस पूरी धारणा को किसी बाहरी घटना से हटाकर एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में बदल देते हैं।
अच्छा,
ये चेतना के रूपांतरण की एक यात्रा है, ये समझने की यात्रा कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है और उसे अनुभव करने से होता क्या है।
तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, पूज्य गुरुदेव सृष्टि की रचना को देखते कैसे हैं? मैंने पढ़ा है कि वो ईश्वर की आदि शक्ति को दो हिस्सों में काम करते हुए बताते हैं।
हाँ, प्रकृति और जीव।
सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, पर शायद इसका अर्थ बहुत गहरा है।
बिल्कुल, ये समझना पूरी तस्वीर के लिए बहुत जरूरी है। वे इसे ईश्वर के दो हाथ कहते हैं।
दो हाथ?
जी, एक हाथ है प्रकृति, यानी ये सारा भौतिक संसार, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने और बिछड़ने से मतलब दुनिया की अनगिनत चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं।
तो ये सृष्टि का जड़ यानी नॉन कॉन्शियस हिस्सा हुआ।
हाँ, और दूसरा हाथ है जीव, जो चेतन जगत की रचना करता है, मतलब जिसमें चेतना है, जीवन है।
अच्छा,
और ये चेतन शक्ति भी देखिए 4 स्तरों पर काम करती है, जीव शक्ति, मन, बुद्धि और अहंकार। और फिर इन्हीं से मिलकर इस दुनिया में करोड़ों तरह के प्राणी बनते हैं, सबके अलग अलग स्वभाव, चेतना के अलग अलग स्तर।
यहाँ जो सबसे अद्भुत बात है वो ये है कि इन दोनों को, जड़ प्रकृति और चेतन जीव को, एक ही शरीर के दो अंगों की तरह बताया गया है।
मतलब दोनों ही ईश्वर तत्व के अंश हैं।
बिल्कुल, एक मिनट, अगर जीव और प्रकृति दोनों ही ईश्वर के अंश हैं, एक ही शरीर के दो हाथ, तो फिर जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? मतलब जड़ और चेतन के बीच, या एक जीव और दूसरे जीव के बीच, ये तो अपने ही एक हाथ से लड़ने जैसा नहीं हो गया?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संघर्ष का कारण उनका स्रोत नहीं है, बल्कि उनके भीतर काम करने वाली 3 मौलिक प्रवृत्तियां हैं।
गुण, सत्व, रजस और तमस।
जी, वही, ये 3 गुण ही पूरी सृष्टि का खेल चलाते हैं। सत्वगुण यानी संतुलन, ज्ञान, पवित्रता,
अच्छाई।
हाँ, अच्छाई। रजोगुण है क्रिया, जुनून, महत्वाकांक्षा, और तमोगुण है जड़ता, अंधकार, आलस, विनाश। हर चीज में, हर इंसान में ये 3 गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं और यही संघर्ष और विविधता पैदा करते हैं।
तो ये तो हुआ सृष्टि का ढांचा, लेकिन अब सवाल आता है उपासना का, मतलब ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया का। और यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक और, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात कहते हैं
कि ईश्वर में भी 3 गुण पाए जाते हैं।
हाँ, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। हम तो ईश्वर को सिर्फ सत्वगुणी, सिर्फ अच्छा मानते हैं।
सही बात है, और यहीं पर साधक के लिए चुनाव का प्रश्न उठता है कि आप ईश्वर के किस गुण से जुड़ना चाहते हैं। ईश्वर तो एक असीम ऊर्जा का स्रोत है, उसमें हर तरह की शक्ति है। ये आप पर है कि आप उस स्रोत से कौन सी ऊर्जा खींचते हैं। पूज्य गुरुदेव यहाँ रावण का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। रावण ने ईश्वर की तमोगुणी उपासना की, उसने कठोर तपस्या तो की, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी?
शक्ति, अहंकार, नियंत्रण,
विनाश।
चलिए रावण के उदाहरण को थोड़ा और खोलते हैं। वो एक महान शिव भक्त था, उसने वेदों का अध्ययन किया था, उसके पास अपार शक्तियां थीं। तो फिर गलती कहाँ हुई?
गलती हुई वृत्ति में, मतलब इरादे में।
इरादे में?
हाँ, उसके तपस्या का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं था, वो तो आत्म प्रसिद्धि और दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता था। उसने ईश्वर से विनाशकारी शक्तियां मांगी और उसे मिली भी। तो उसकी शक्ति उसके लिए और पूरे समाज के लिए एक बंधन और विनाश का कारण बन गई।
ये तो वैसा ही हुआ जैसे चाकू से आप सर्जरी करके जान बचा भी सकते हैं
और किसी की हत्या भी कर सकते हैं, चाकू तो बस एक उपकरण है, इरादा, इरादा महत्वपूर्ण है। रावण ने अपनी भक्ति का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया।
लेकिन कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि आज की जो दुनिया है इतनी प्रतिस्पर्धी,
हाँ?
उसमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत स्वार्थी या आक्रामक वृत्ति यानी रजोगुण जरूरी है।
क्या गुरुदेव की शिक्षा आज के लिए कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं है? ये एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, पूज्य गुरुदेव आदर्शवादी है लेकिन अव्यवहारिक नहीं। वो ये नहीं कहते कि रजोगुण और तमोगुण को एक दिन में खत्म कर दो।
अच्छा,
वो एक क्रमिक यात्रा की बात करते हैं, तमोगुण से रजोगुण की ओर और फिर रजोगुण से सत्वगुण की ओर,
एक एक कदम करके।
जी, रजोगुण यानी महत्वाकांक्षा और कर्म अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो एक बहुत शक्तिशाली इंजन हो सकता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, तो ये रजोगुण का सात्विक उपयोग है।
पर अगर वो डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनना चाहे तो?
तो वही रजोगुण स्वार्थ में बदल जाता है। इसीलिए शास्त्र हमेशा ईश्वर के सत्व तत्व की उपासना का ही निर्देश देते हैं, क्योंकि अंत में वही स्थायी सुख और उन्नति देता है।
ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उपासना का मतलब हम अक्सर पूजा पाठ या मंत्र जाप
या कोई कर्मकांड ही समझते हैं।
हाँ, तो गुरुदेव के अनुसार ये सत्व की उपासना असल में है क्या? क्या ये कोई खास विधि है?
उनके अनुसार उपासना का मूल अर्थ है पास बैठना।
पास बैठना?
हाँ, किसके पास बैठना? ईश्वर के गुणों के पास। ये एक बहुत ही सुंदर मनोविज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है अपने अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा करना जो ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य सात्विक शक्तियों को अपनी ओर खींचे।
ये तो चुंबक जैसा सिद्धांत लग रहा है कि हम अपने भीतर एक ऐसा मानसिक चुंबक तैयार करें
जी,
जो केवल अच्छी और सकारात्मक शक्तियों को ही अपनी ओर खींचे।
बिल्कुल सही उपमा है। और इस चुंबक को बनाने के लिए, या कहिए उसे चार्ज करने के लिए, चार चीजों की जरूरत बताई गई है।
कौन सी चार चीजें?
प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और अभ्यास। इन चारों के तालमेल से जो आकर्षण पैदा होता है वही सच्ची उपासना है।
ये चुंबक वाली बात कमाल की है, लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है।
पूछे।
अगर हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को आकर्षित कर रहे हों तो क्या इस चुंबक की पोलैरिटी मतलब ध्रुव को बदलने का कोई तरीका है?
निश्चित रूप से, यही तो पूरी साधना है। ये जो चार उपकरण हैं, न, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, अभ्यास, ये इसी पोलैरिटी को बदलने के लिए हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ भावना नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति एक गहरी आत्मीयता। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में और इसके अच्छे परिणाम में एक गहरा भरोसा।
और विश्वास?
विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ। और अभ्यास यानी डिसिप्लिन, उस दिशा में लगातार प्रयास करते रहना, चाहे मन भटके या मुश्किलें आएं। जैसे दिया सलाई, ईंधन और हवा के मिलने से ही आग प्रकट होती है, वैसे ही इन चारों के मिलने से हमारे भीतर सत्व की अग्नि प्रकट होती है।
और ये सत्व गुण हैं क्या जिन्हें हमें आकर्षित करना है? मुझे लगता है कि इनकी एक सूची भी दी गई है।
हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीने के तरीके हैं।
जैसे कि?
जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता, न्याय। उपासना इन गुणों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया है।
इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण?
जरूर। सम्मता का मतलब सिर्फ ये मानना नहीं कि सब बराबर है। इसका मतलब है कि हम अपने घर में काम करने वाले व्यक्ति से भी उसी सम्मान और अपनेपन से बात करें जैसे हम अपने बॉस से करते हैं।
सही बात है।
करुणा का मतलब सिर्फ किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं, बल्कि उसकी मदद के लिए सच में अपना हाथ आगे बढ़ाना है। जब हम इन गुणों का गहराई से चिंतन करते हैं और इन्हें अपने व्यवहार में लाने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मानसिक चुंबक इन्हीं गुणों को अपनी ओर खींचने लगता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ईश्वर को दयालु, करुणा निधान, न्यायकारी जैसे नामों से पुकारते हैं,
तो हम असल में अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे होते हैं।
वाह।
हम ईश्वर के उस रूप की आराधना कर रहे होते हैं जैसा हम खुद बनना चाहते हैं।
बिल्कुल।
हम ईश्वर में अपने उच्चतम आदर्शों का प्रतिबिंब देखते हैं और फिर उस प्रतिबिंब को अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करते हैं। उपासना एक तरह से इन उच्च गुणों की एक मानसिक प्रतिमा बनाकर उसे अपने जीवन में उतारने का विधान है।
जहाँ चाह वहाँ राह वाला सिद्धांत यहाँ पूरी तरह से लागू होता है।
जी
ठीक है, तो हमने सृष्टि का ढांचा समझा, उपासना के पीछे का विज्ञान समझा और सत्व गुणों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया को भी जाना। तो अब हम अपनी चर्चा के सबसे मुख्य शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इन सब बातों का ईश्वर की प्राप्ति से क्या संबंध है? अगर ये सब गुणों को धारण करने की प्रक्रिया है तो फिर प्राप्ति का क्या मतलब हुआ?
यहीं पर पूज्य गुरुदेव पूरी तस्वीर को बदल देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मतलब किसी बाहरी वस्तु को पाना नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक अवस्था है, एक परिणाम है। जब कोई भक्त सच्चे मन से, पूरी लगन से सत्व की उपासना करता है, मतलब इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने का निरंतर अभ्यास करता है,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे परिणाम ना मिले।
बिल्कुल।
यहाँ एक बहुत सुंदर पंक्ति है, जेही कर जेही पर सत्य सनेहु, सो तेही मिलत न कछु संदेहु।
मतलब जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो अगर हमारा स्नेह सत्व से है तो सत्वारों में मिलेगा ही।
और जब ये सत्व मिलता है तो क्या होता है? विभिन्न पूजा पाठ, कर्म कांड, जप तप, ध्यान के द्वारा साधक अपनी चेतना को ईश्वरीय सत्व में सराबोर करता है,
पूरी तरह से डुबो देता है।
जैसे एक सूखा स्पंज पानी में डाल दिया जाए।
हाँ, कल्पना कीजिए, स्पंज पानी को प्राप्त नहीं करता, वो पानी से सराबोर हो जाता है, वो पानी ही बन जाता है।
ठीक वैसे ही हमारी चेतना इन सात्विक गुणों से सराबोर हो जाती है
जी।
और उस सराबोर होने की अवस्था में जो एक गहरे आनंद, एक अद्भुत शांति का जो अनुभव होता है,
उसी स्थिति को समाधि कहते हैं,
जब जीव और ईश्वरीय सत्व के बीच की दूरी मिट जाती है।
हाँ, और यहीं पर अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है। जीव जब ईश्वरीय सत्ता की सर्वोच्च श्रेणी यानी सत्वावस्था में पूरी तरह सराबोर हो जाता है, जब उसकी चेतना अनंत आनंद और शांति में तल्लीन हो जाती है, तो उस सत्वगुण की परिपूर्णता को ही ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं।
जी बिल्कुल, यही।
वाह, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल गई। ईश्वर को पाना मतलब अपने भीतर सत्वगुण को उसकी पराकाष्ठा तक विकसित कर लेना। ये कोई भारी खोज नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना का सर्वोच्च विकास है।
इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग।
बिल्कुल, ईश्वर की प्राप्ति एक घटना नहीं, एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति का चरित्र, उसके विचार, उसके कर्म, सब कुछ प्रेम, करुणा, न्याय और समता जैसे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो जाते हैं।
जब किसी व्यक्ति का जीवन इन गुणों का जीता जागता उदाहरण बन जाता है,
वही सच्ची ईश्वर प्राप्ति है। उसे फिर ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो इन सब का क्या मतलब निकलता है?
ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सार ये है कि ईश्वर की प्राप्ति कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है।
जी,
ये अपने भीतर विशिष्ट सकारात्मक गुणों यानी सत्व गुण को विकसित करने की साधना है। ये हर पल एक चुनाव है कि कोई अपनी ऊर्जा और ध्यान को किस दिशा में निर्देशित करता है, तमोगुण की ओर, रजोगुण की ओर,
या सत्वगुण की ओर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य को एक व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक अनुशासन में बदल देता है।
ये यात्रा तमोगुण से सत्वगुण की ओर है,
निम्न प्रवृत्तियों से उच्च सद्गुणों की ओर। और जैसा कि इस शिक्षण का उद्देश्य भी है, यही मार्ग एक सुविकसित व्यक्तित्व की नींव रखता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर सत्वगुण बढ़ाता है तो वो अधिक संतुलित, करुणामय और विवेकपूर्ण बनता है।
और जाहिर है, जब ऐसे व्यक्ति एक परिवार में होते हैं तो परिवार अपने आप सुसंस्कृत बनता है।
हाँ, वहाँ संघर्ष की जगह सहयोग होता है,
स्वार्थ की जगह त्याग होता है।
और जब ऐसे परिवार एक समाज का निर्माण करते हैं तो वह समाज स्वाभाविक रूप से संपन्न और न्यायपूर्ण बनता है।
तो ये व्यक्तिगत साधना असल में एक बेहतर दुनिया बनाने की बुनियाद है।
जी,
यह सिर्फ मोक्ष या समाधि का नहीं, बल्कि एक जागृत और जिम्मेदार जीवन जीने का विज्ञान है।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीव और प्रकृति ईश्वर के दो हाथ हैं।
जी,
अगर ये सच है तो इसका न केवल हमारी अपनी आध्यात्मिक स्थिति के लिए, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की स्थिति के लिए हमारी जिम्मेदारी के बारे में क्या अर्थ है?
बहुत गहरा सवाल है।
क्या प्रकृति का विनाश ईश्वर के एक हाथ को चोट पहुंचाने जैसा नहीं?
इस पर विचार किया जा सकता है।